हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वेद ने सबके सामने ये ऐलान तो कर दिया था कि शिवांशा उसकी पत्नी है, लेकिन इसकी वजह से उसने अपने लिए एक मुसीबत खड़ी कर ली थी। उसे शिवांशा को जान से मारना था। अब वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि लोगों की नज़रों में शिवांशा उसकी पत्नी थी। ऐसे में उसे कुछ होता तो सारा शक वेद के ऊपर आता। वैसे भी जब रिपोर्टर्स ने उन्हें कवर करना शुरू किया था, तब उन्होंने वेद के ऊपर शिवांशा को किडनैप करने का इल्ज़ाम लगाया था। इस वक्त वेद बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो शिवांशा को गाड़ी में लेकर कहीं जा रहा था। उसने प्रतीक को भी रास्ते में उतार दिया था। उसे इतने गुस्से में देखकर शिवांशा उसके पास बैठी सीट पर कांप रही थी। रात के लगभग 3 बजे के करीब वेद की गाड़ी एक पहाड़ी पर जाकर रुकी। वेद गाड़ी से बाहर निकला और तेज आवाज में बोला, बाहर निकलो। शिवांशा जल्दी से बाहर आ गई थी। इस वक्त वो एक पहाड़ी पर खड़े थे। वेद काफी गुस्से में था, जबकि शिवांशा उसके सामने नजरें झुकाकर खड़ी थी। वेद उस पर तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, तुम अच्छे से जानती थी ना कि वहां पर रिपोर्टर्स खड़े हुए हैं। वो तुम लोगों की शादी कवर करने के लिए वहां जा रहे थे। तभी तुमने अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर राजावत फैमिली जाने की बात कही। यू नो वॉट, गलती तुम्हारी नहीं है, मेरी है। जो ये जानते हुए भी कि तुम उन धोखेबाज लोगों का खून हो, फिर भी तुम पर यकीन किया। उसकी बात सुनकर शिवांशा रोने लगी। वो वेद की तरफ देखकर ना में सिर हिलाने लगी। उसने सुबकते हुए कहा, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने किसी तरह का कोई जाल नहीं बिछाया, ट्रस्ट। एक बार जो गलती की थी वो दोबारा नहीं करूंगा, वेद ने उसकी बात बीच में काटते हुए सर्द आवाज में कहा। शिवांशा के पास अपनी सफाई में कुछ नहीं था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं आपको फंसाने की क्यों कोशिश करूंगी, मैं तो आपको जानती तक नहीं, हम पहली बार मिले हैं। हम पहली बार जरूर मिले हैं, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो मैं कौन हूँ, जानते हो ना मैं कौन हूँ, वेद ने तेज आवाज में चिल्लाकर पूछा। शिवांशा ने उसकी तरफ देखा और हाँ में सिर हिला दिया था। वो वेद सिंह चौहान के बारे में पहले से जानती थी। हाँ, वो उससे मिल जरूर पहली बार रही थी। उसे वेद से नफरत थी, क्योंकि उसकी वजह से उसे ये नियति मिली थी जहां उसे इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा था। वेद ने सार्कास्टिकली सिर हिलाया और कहा, चलो कहिए तो सच बोला तुमने, अब मुझे बताओ कि मुझे राजावत फैमिली क्यों लेकर जा रही थी। उन लोगों के साथ मुझे मारने का प्लान था ना तुम्हारा? नहीं, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, वो तो खुद मुझे मारना चाहते हैं, शिवांशा ने अपनी सफाई में कहा। उसने अभी भी नहीं बताया था कि वो वेद को लेकर राजावत हाउस क्यों जाना चाहती थी। शिवांशा को लगा कि वो बातों में वेद को टाल सकती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। वेद उसके पास आया और उसे पीछे की तरफ धकेल दिया था। शिवांशा नहीं जानती थी कि इस वक्त वो पहाड़ी के किनारे पर खड़ी है। वो नीचे गिरती उससे पहले वेद ने उसका हाथ पकड़कर उसे थाम लिया था। इस वक्त शिवांशा के चेहरे पर गहरे डर के भाव थे। अगर वेद उसका हाथ छोड़ देता तो अगले ही पल वो खाई में गिर जाती। अब मुझे बताओ कि तुम राजावत हाउस मुझे क्यों लेकर जा रही थी? जिस तरह से तुम मुझे टालने की कोशिश कर रही हो ना, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं जो मुझे समझ नहीं आएगा कि बात कुछ बड़ी है, वेद ने शिवांशा की तरफ देखते हुए सर्द आवाज में कहा। शिवांशा की दिल की धड़कनें डर के मारे तेज हो गई थीं। वो जानती थी कि वेद के लिए उसका हाथ छोड़ना कोई आसान बात नहीं है। वैसे भी वो उसे मारना ही चाहता था। ऊपर से थोड़ी देर पहले उसने शिवांशा की किडनैपिंग को जिस तरह से हैंडल किया, उससे एक बात साफ थी कि शिवांशा की मौत का राज दबाना भी उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। शिवांशा रोते हुए बोली, मेरा भाई उनके पास है, वो उसे मार देंगे, मुझे भी मारना चाहते हैं, बस उसे बचाने के लिए जा रही थी, प्लीज उसे कुछ मत कीजिएगा, वो सिर्फ 14 साल का है, ऊपर से वो चल भी नहीं सकता, बस उसी को बचाने जा रही थी, प्लीज छोड़ दीजिए। शिवांशा के चेहरे की मासूमियत देखकर साफ था कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। वेद ने उसे एक झटके में ऊपर खींच लिया था। शिवांशा जल्दी से नीचे बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। वेद बिल्कुल उसके पास खड़ा था। शिवांशा ने उसके पैर पकड़े और कहा, आपके परिवार के साथ जो भी हुआ उसकी सजा आपने मेरी फैमिली को दे दी है, आप चाहो तो मुझे मार दो, लेकिन मेरे भाई को कुछ मत करना, उसे बचा लीजिए मिस्टर चौहान, वैसे भी वो हमारा खून नहीं है, मेरी माँ के भाई का बेटा है, उसके मम्मी पापा की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी तो मम्मी उसे हमारे घर ले आई थी। शिवांशा उसके पैरों में बैठकर गिड़गिड़ा रही थी। वेद उससे कुछ कदम दूर हुआ और तेज आवाज में बोला,
गाड़ी में बैठो। शिवांशा चुपचाप खड़ी हुई और उसके ऑर्डर्स फॉलो करते हुए गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गई थी। वहीं वेद अभी तक बाहर था। उसने अपना सिर पकड़कर कहा, एक बात समझ नहीं आ रही है, राजावत फैमिली को देवराज ठाकुर की पोती को प्रोटेक्ट करने का काम मिला था, तो उसके मरने के बाद वो उस लड़की को मारने क्यों जा रहे थे? वेद कन्फ्यूज जरूर था, लेकिन वो बहुत समझदार था। शिवांशा की मासूमियत उसकी आंखों से झलक रही थी। उसका कहा एक एक शब्द उसे सच्चा लग रहा था। वेद ने तुरंत प्रतीक को कॉल किया और कहा, ये लड़की कह रही है कि इसका कोई छोटा भाई भी है, कजिन ब्रदर है, जो राजावत फैमिली के कब्जे में है। बच्चा 14 साल के करीब है, उसे ढूंढो। राजावत फैमिली ने उसे किडनैप कर रखा है और मुझे पूरा शक अंकुश पर है। हाँ, मैं देख लूंगा, लेकिन आपने सोचा है कि घर वालों से क्या कहेंगे? आपने इस लड़की को अपनी पत्नी बताया है, ऐसे में उन्हें पता चला कि ये देवराज ठाकुर की पोती है तो सब इससे बहुत नफरत करेंगे। फिलहाल इसे कुछ भी करना सही नहीं रहेगा, प्रतीक ने परेशान स्वर में कहा। हाँ, जानता हूँ, मैं देखता हूँ इस मामले में क्या करना है। तुम बस शांत रहना और फिलहाल इस लड़की के बारे में किसी को कुछ मत बताना, वेद ने जवाब दिया और फिर कॉल कट कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ अंकुश और अरमान दोनों ही राजावत फैमिली पहुंच चुके थे। वहां पर भी हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि वेद से जुड़ी जो खबर आ रही थी उस बारे में उन्हें भी पता चल चुका था। ऊपर से शिवांशा के अचानक गायब होने की वजह से मनन ने अपना पूरा होश खो दिया था। देवेश जैसे तैसे करके मनन को संभालने की कोशिश कर रहा था। शादी अटेंड करने आए गेस्ट बातें बनाते हुए वहां से चले गए थे। वहां राजावत फैमिली के लोग बचे हुए थे, जो अंकुश के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अंकुश और अरमान ने अंदर कदम रखा, मनन दौड़ते हुए अरमान के पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, अरमान, मेरी शिवी कहाँ है? तुमने कहा था कि तुम उसे इन गंदे लोगों से बचा लोगे। मैंने टीवी में देखा, वो एक आदमी के साथ थी, उसने उसका हाथ पकड़ रखा था और बोला कि वो मेरी पत्नी है। वो झूठ बोल रहा है ना, शिवी की शादी मुझसे होगी और जिसकी शादी होती है वही पति पत्नी होते हैं। शिवी मेरी पत्नी बनेगी, उसने प्रॉमिस किया था। पक्का प्रॉमिस ना? मनन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। पहली बार अरमान ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। अरमान कभी मनन से झूठ नहीं बोलता था। उसने बिना कुछ कहे पलकें झपका दी। अरमान फिर मनन के गाल पर हाथ रखकर कहा, अच्छा मनन, हम बड़े लोग बातें कर रहे हैं तो तुम जाकर कमरे में आराम करो।
अरमान ने बहाने से मनन को वहां से भेज दिया था। उसके वहां से जाते ही अरमान ने गुस्से भरी निगाहों से तेजेंद्र और देवेश की तरफ देखा। वो उनकी तरफ बढ़ते हुए तेज आवाज में बोला, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? उस मासूम सी लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आप उसे जान से मारना चाहते थे, और आपका ये महान बेटा उसके साथ? अरमान की बात पूरी होने से पहले ही अंकुश बीच में बोल पड़ा। वो जल्दी से बोला, अरमान, तुमने हमेशा इस घर के मैटर्स से खुद को दूर रखा है, तो अभी भी दूर रहो ना, तुम तो कुछ जानते भी नहीं हो। नहीं जानता, लेकिन एक बात तो साफ है कि गलती आप ही लोगों की रही होगी। आज आपकी वजह से शिवांशा मुश्किल में आ गई है, न जाने वो वेद सिंह चौहान उसके साथ क्या करेगा। अरमान ने परेशान स्वर में कहा, वही करेगा जो हम करने जा रहे थे। देखा जाए तो अच्छा हुआ जो हमारे ऊपर किसी तरह का इल्ज़ाम नहीं आएगा। वेद ने सबके सामने उस लड़की को अपनी पत्नी बताया है, ऐसे में वो अपना बदला पूरा करने के लिए उस लड़की को मारेगा भी तो उसी का ही नुकसान है, अंकुश ने बेपरवाही से कहा। उसने सबके सामने यही जाहिर किया कि शिवांशा के जाने से उनका फायदा ही हुआ है, ताकि कोई उस पर उंगली ना उठा सके। अंकुश की बात पूरी होते ही तेजेंद्र ने उसका गला पकड़ लिया। वो उस पर चिल्लाकर बोले, बेवकूफ आदमी, मारने को हम उस लड़की को पहले भी मार सकते थे, लेकिन अब तक उसे सुरक्षित रखा उसका कोई तो कारण रहा होगा। अगर उन लोगों को पता चला कि वो लड़की शिवांशा वेद सिंह चौहान के हाथ लग गई है तो खतरा हमारे ऊपर भी आएगा। कैसे भी करके उस लड़की को वापस लेकर आओ, वरना मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगा। तेजेंद्र की इस हरकत से अंकुश हड़बड़ा गया था। गीतिका भी वहीं पर खड़ी हुई थी। तेजेंद्र उसकी तरफ पलटा और कहा, अपने मायके जाओ गीतिका, यही सही मौका है। सबको बोलो कि वेद और शिवांशा की शादी नहीं हुई है, बल्कि मनन और शिवांशा की शादी होने वाली थी। उस लड़की का सच पूरे परिवार के सामने बताओ और उसे कैसे भी करके यहाँ लेकर आओ। लेकिन पापा जी, मैं कैसे जा सकती हूँ? आप अच्छे से जानते हैं, वेद मेरा भाई जरूर है, लेकिन उसके पापा और मेरे पापा सौतेले भाई थे। ऊपर से हमारे बीच के रिश्ते ऐसे नहीं हैं कि मैं चौहान पैलेस में कदम भी रख सकूं। गीतिका ने नज़र झुकाकर कहा, फिर भी अपने घर जाकर लोगों के मन में शक तो डाल ही सकती है, तेजेंद्र ने कहा तो गीतिका ने हाँ में सिर हिला दिया था।
गीतिका वहां से जाने की तैयारी करने लगी। अंकुश भी उसी के साथ जा रहा था। अंकुश और गीतिका के वहां से हटते ही तेजेंद्र भी जब अपने कमरे में जाने को हुआ, तब अरमान ने पीछे से तेज आवाज में कहा, अंकुश उसके साथ रेप करने की कोशिश कर रहा था। बहुत साल पहले मैंने आपको बताया था कि अंकुश हिवांशा को फिजिकल असॉल्ट कर रहा है। तब आपने हम सबको दिल्ली भेज दिया था। अब इस मामले में आप क्या करेंगे, मिस्टर राजावत? तेजेंद्र अरमान की तरफ पलटा। उसकी भौहें चढ़ी हुई थीं। वो अरमान से तेज आवाज में बोले, बड़े पापा, इसी नाम से बुलाओ हमें। पिछली बार तुम्हारी बात मानकर हमने उस लड़की को तुम्हारे साथ भेजा था ना। वैसे भी सालों पहले राजा महाराजाओं के यहाँ दासियां काम करती थीं। वो उन्हें हर तरीके से खुश करने की कोशिश करती थीं। शिवांशा इस घर की नौकरानी नहीं है और मुझे आपकी सोच पर शर्म आती है, अरमान ने सख्ती से कहा। तेजेंद्र से बहस करने का कोई फायदा नहीं था। जितनी उनकी लड़ाई बढ़ती, तेजेंद्र की घटिया सोच देखकर अरमान को उतनी ही घिन महसूस होती। यही सोचकर वो वहां से चला गया। दूसरी तरफ शिवांशा और वेद इस वक्त गाड़ी में थे। शिवांशा ने वेद को अपने भाई को बचाने के लिए कह तो दिया था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वेद इस मामले में क्या करने वाला है। वेद चुपचाप गाड़ी चला रहा था और शिवांशा उसके पास बैठी थी। गाड़ी के अंदर एक खामोशी पसरी हुई थी। शिवांशा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वेद से कुछ भी पूछ सके। चौहान पैलेस आने से कुछ दूर पहले वेद ने गाड़ी रोकी तो शिवांशा के दिल की धड़कनें फिर से डर के मारे तेज हो गई थीं। पिछली बार जब वेद ने गाड़ी रोकी थी, तब वो उसे मारने के लिए पहाड़ी पर लेकर चला गया था। अब न जाने वो उसके साथ क्या करने वाला था। डर के मारे शिवांशा खुद में ही सिमटने लगी थी। वेद ने उसकी तरफ देखा। उसके डर को समझते हुए उसने गहरी सांस लेकर कहा, डरो मत, अभी नहीं मारूंगा, लेकिन बेफिक्र भी मत हो जाना कि कभी नहीं मारूंगा। मैंने लोगों के सामने झूठ बोला है कि तुम मेरी पत्नी हो। जब तक तुम इस ड्रामे को करती रहोगी, तब तक तुम्हारी जान बची हुई है। और गलती से भी मेरी फैमिली के सामने अपनी पहचान मत बता देना शिवांशा ठाकुर, वरना जो काम करने से पहले मैं दो बार सोचूंगा, वो एक मिनट नहीं लगाएंगे तुम्हारी जान लेने से पहले। शिवांशा को उसकी बात समझ नहीं आई। वो उलझन भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। वेद ने भी कुछ समझाना जरूरी नहीं समझा। वो गाड़ी से बाहर निकला और लगभग 10 मिनट बाद आया तो उसके हाथ में एक सिंदूर की डिब्बी थी। वो भी वेद पास ही के मंदिर से लाया था। सुबह का सूरज अभी निकला नहीं था। इतनी सुबह कोई शॉप खुली नहीं थी। इस वजह से वेद ने अपने गले में पहना हुआ गोल्ड का चेन निकाला जिसके अंदर देवी माम की मूर्ति थी। उसे देने से पहले वेद ने उस चेन पेंडेंट को गौर से देखा, फिर उसने उसे शिवांशा के हाथ में रख दिया था। इसे पहन लो और सिंदूर लगा लो। नाम के लिए ही सही, लेकिन आज से तुम शिवांशा वेद सिंह चौहान हो, वेद ने अपनी गहरी आवाज में कहा। उसके कहे एक एक शब्द शिवांशा के कानों में गूंज रहे थे। बिना शादी किए ही वेद ने उसे अपनी पत्नी का दर्जा दे दिया था और अब उसे सीधे अपने घर लेकर जा रहा था। कोटिका कोटिका कोटिका, क्या सच में इतना रिश्ता इतना आसान रहने वाला है? आप सबका शुक्रिया जो आप मेरे कहने पर समीक्षा का टारगेट पूरा करते हो। इससे मेरा भी लिखने का मन बना रहता है। आपको कहानी कैसी लग रही है ये जरूर बताइएगा और कमेंट किए बिना मत जाना। ज्यादा टाइम नहीं तो इमोजी छोड़ देना।